have a choice between Christianity and Judaism, which one would you take? And the Muslim thought Judaism is closer to Islam than Christianity. And he said, Judaism. So the king decided, if those two are telling me Judaism, I'm gonna take Judaism as a religion for the state, because there was no religion. And Judaism, and that the king of Khazar, where the Jews mainly come from now, which is near Georgia, that's the region I'm talking about, became Jewish just by conversion. And then the whole nation adopted that religion. And then they came up with the thing that if the mother has to be, you know, Jewish and all that. So those converts, they converted in like a matter of few months, the whole nation became Jews in that region. And that's actually in the history. The Khazar people, these are all originally from Georgia. And they spread to Poland, and then they went to Germany and to Russia. And then they came to Palestine. So that's the history of it.
Thank you very kindly, Dr. Khaldun Zaitouni. You explained it. And you know what? I think we have to have another meeting, because when we talk about the religion, and as you told about the Georgian people and their conversion, and because two religions said that the Judaism is closer to them, so that king accepted Judaism side or converted into the Judaism. Whereas if we talk about the Christianity and Judaism, and I think so, we can let this topic for the next this subject for the next program. Christians, I think the crucifixion of Isa alayhi salam, they blame the Jewish community for that. And there is a great rift because of that religious thing, which I think so we will cover it next time. My knowledge is not that much, and I would like to take an advantage of your knowledge for that. And definitely we would like to talk about the topology of this area as well. But you brought it, and I believe the map, what we showed now, it shows the what is the main reason of this. One question which comes in my mind is that till yesterday, 7 or 8 days ago, 10 days ago, everybody was talking about the Abraham Accord. Everybody was talking about the acceptance of Israeli state. Saudi Arabia gave the airspace to Israeli planes. What happened all of a sudden that the Jewish Netanyahu, he didn't know about these oil wells before, and this thing came up because...
Yes, the Netanyahu knew about the oil, the gas, they all knew, but they were taking their time. I mean, there's no rush, really. You're talking about a history of a nation. So Israel as a state can wait for a few more years. It wasn't an issue. They're not in a rush. There's so much to do still for them. So they decided this is the time and date. But what happened recently is that, if you notice, there was in the summer this year, there was a meeting between the Chinese Prime Minister, the head of state, the Saudi head of state, and the Israeli. And the meeting was that they will have an open relationship and peaceful, you know, an open peace and forever peace with Israel, that's the Saudis, if they go back to 1967 borders. Now, in the meeting, Netanyahu did not say no. He's not going to go back to 1967 borders. But he did not want to say no in front of his Chinese president. And he didn't want to...
offend
him. Yeah. So he didn't want to like sound like he's not in for peace and he doesn't want... So he kind of nodded, accepted that, okay, we are going to work towards this. And then this happens now. Now this, when this happened, if you heard the news, the Saudis straight away said, no more negotiation, end of story. And that's what Israel wants. You know, so you know, it's beneficial. This attack on the Palestinians is beneficial to the Israelis in every respect.
Let me ask you the concluding remarks, Dr. Khaldun Zaitouni. Now the Israel doesn't want to go to 67 borders. Now they want to extend. They will take over Gaza. They will take Golan Heights. They will take West Bank. Do you think they are willing to increase their area? And they, even though United Nations want them to go back to their territories, and do you think they will go back, or they won't leave this area?
No, they won't. They won't. They're not going to give in any air, any inch they've taken. They're not going to give it back.
Thank you very kindly, and I request you be with us, because you know the area, you know the history, and if we can talk about the area once again, because I was listening to this debate and they were saying that we did this mistake in 2005 and afterwards we regret now, because the Muslims and Palestinians, they did not respect those things, and Israel took back. I would request you to give us time again, and so we can talk about this.
Okay, that's fine. Just give me enough notice, and I'll prepare something.
I look forward, Dr. Khaldun. Thank you very much for being with us, and I thank to Dr. Samiullah Malik as well that I got hold of you. I definitely wanted to have the first-hand experience from somebody who knows the area. He knows some facts, and as you are an engineer, and you definitely spoke what your subject is and the way you know this area. Thank you very much for being with us.
Thank you.
Dr. Musa Haider, the outliner in South Asia, what went wrong, news and events, Metropolitan University. Dr. Saab, I definitely want you to join us as well so that we can talk about this, Dr. Musa Haider. Aur main batana chahti hu ki Dr. Musa Haider ek program bhi karwa rahe hain. And again, you must attend this event. International bhi baat hogi, Pakistan ke hawale se bhi baat hogi. The outliner in South Asia. What went wrong? Professor Akbar Zaidi, PhD, hai, Dr. Akbar Zaidi, Executive Director, hai, Institute of Business Administration. Ke. Dr. Musa Haider bhi mere saath aayenge. We will talk about 23 tarikh ko. Today is 19 tarikh, kal 20, 21, 22 aur 23. Ye coming weekend ke upar ye program hoga. Hamari team bhi wahan pe maujood hogi. शाम को 6 बजे ये प्रोग्राम है रॉजर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 55 डंडा स्ट्रीट वेस्ट. आपसे रिक्वेस्ट है, रजिस्टर कीजिए अपने इवेंट के लिए. और इसके लिए हम आपको कैसे अब ये प्रोवाइड करें. डॉक्टर मुज़ा हैदर भी बाबू का पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी ने सानू फसाया हुआ है. फोन नंबर दे दियो डॉक्टर साहब, तानू कॉल करके RSVP करा लीजिए. और आपने अब वो एक दिया है, इसका एक विजिट दिया है, वहां पे आप जाके अपने रजिस्टर करवा सकते हैं. वो कहते हैं कि 1960 में पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि पूरी दुनिया की हेल्प करता, फिर पता नहीं क्या हो गया. पता नहीं क्या हो गया, इसी की बात करेंगे डॉक्टर अकबर जैदी, PhD, 23 तारीख को. एंड दिस इवेंट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फॉर फ्री है. जस्ट हैव द नॉलेज. ये घर बैठ के एज्यूम ना करें. अल्लाह की कसम, आज मैं सुबह सोच रही थी, बहुत शुक्रिया उन तमाम ग्रुप्स का जिन्होंने मुझे भी ज्वाइन कराया हुआ है. खुदा की कसम, मेरे पास टाइम ही नहीं है व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखने का. मतलब एक ही मैसेज 25-25 दफा हर बंदे ने फॉरवर्ड किया, और बार बार बार. मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि फोकस योरसेल्फ ऑन एजुकेशन, फोकस योरसेल्फ ऑन द वर्क, बजाय इसके कि ये जो व्हाट्सएप और सीना गजट को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसे बेहतर है कि साहिब इल्म लोगों के साथ मुलाकात कीजिएगा, अंडरस्टैंड करें ये जो एजम्पशन के ऊपर. और एक जो ये नया मसला चला है ना कि हर जो दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रस्ते बना लिए. यानी खबर इसराइल की हो रही है, बात हमने इसराइल की शुरू की, पहुंच जाती है पाकिस्तान. इंटरनेशनली देर आर स्ट्रांग कंट्रीज. मेरे एक भाई की कल मुझे कॉल आई, ही वॉज वेरी दुखी, एंड आई थिंक ही इज गोइंग, पीपल आर गोइंग थ्रू, मतलब ब्रेकडाउन का शिकार होने वाले हैं कि भाई क्या हो रहा है पाकिस्तान में. भाई पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स है. आप इमेजिन कीजिएगा कि तेल के जखायर को हासिल करने के लिए पीपल आर रेडी टू डू एनीथिंग. अभी जब मैं 19th सेंचुरी वेस्टर्न नेशन जो आर्कटिक वर्ल्ड को अब ये जो वेस्टर्न नेशन जो है वो नॉर्थ पोल में जो रशिया के साथ है दे वांट टू कॉन्कर दैट एरिया एज वेल. तो आपका कहना रूस बैठने देगा, ये वो जगह है मगरबी दुनिया ये जो 21वीं सदी है ना इसमें दुनिया का नया नक्शा तरतीब देना चाहती है. अब कहते हैं कि दुनिया का वो मुल्क जो नॉर्थ पोल में सबसे पहले अपना झंडा गाड़ेगा ना वो आर्कटिक के जो समंदर है उसके ऊपर कंट्रोल भी कर लेगा. रूस, चीन, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड ये सारे के सारे ममालिक अपना रोल प्ले कर रहे हैं. आर्कटिक की आपको पता है बर्फ पिघलती जा रही है और 95% समंदर की बर्फ पिघल गई है. ये वो हिस्सा है जहां से जब किसी वैसल को गुजरना होता था ना तो उनको लीड करता था रशिया की वैसल लीड करती थी और आइस ब्रेकर्स भी रशिया के होते थे. ये रूट बड़ा कमाल का है, यानी लोगों को और मुल्कों को घूम के जब जाना पड़ता है जो महीनों के बीच में सफर तय होता है वो घंटों में और दिनों में तय हो सकता था. तो 95 आर्कटिक की जब बर्फ पिघल चुकी है और अगर आपने मिशन को भी कंट्रोल करना है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, कहते हैं कि 2040 तक आर्कटिक की जो नॉर्थ पोल है उसकी बर्फ उक्का ही पिघल चुकी होगी. रड़ा समुंदर जैसे बहिरा अरब है, जहाज गुजर सकेंगे. दुनिया वामुन्नास के लिए तबाही मगर कौमों के लिए नए वसाइल. यहां पर 13% तेल है, 30% गैस है, यूरेनियम है, सोना है, डायमंड, नायाब जमीनी धाते और ये समंदर आज तक कभी किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं किया. 2018 में सर्वे हुआ था, 90 बिलियन बैरल ऑयल था, 669 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस है, 44 बिलियन बैरल नेचुरल गैस इसमें है. वसाइल बेशुमार है. अब ये सारे मुल्क जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें चाइना भी है, चाइना तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले पे है, इन्होंने अलास्का, अमेरिका के पास तो अलास्का है, रशिया की गलती थी, रशिया ने ही बेचा था, कनाडा है, न्यूजीलैंड है. समंदरी रास्ता कहते हैं कि अगर ये आर्कटिक के समंदर से जहाज गुजरेंगे तो 40% जो है ना वो फासलों को कम कर देगा. 40% वक्त की बचत होगी, शॉर्टकट होगा. कहते हैं मिसाल के तौर पर रोस्टरडैम से अगर जापान, अब स्विस केनाल को इस्तेमाल किया जाता है, 30 दिन की मुसाफत है. अगर आर्कटिक के रास्ते सफर किया जाएगा वही जो 30 दिन में एक महीने में सफर होता है 18 दिन में मुकम्मल हो जाएगा. तो बहरहाल इनको मैं दोबारा आपके साथ शेयर जरूर करूंगी और विद मैप्स शेयर करूंगी. दिस इज द टाइम टू गो टू पाकिस्तान. अफसार आलम साहब मेरे साथ हैं, बेशतर इसकी मैं अफसार आलम साहब को लेके आऊं. आई थैंक ऑल माय स्पॉन्सर्स जिनके तवस्सुत से ये प्रोग्राम पेश कर सकते हैं. वी हैव नो कंपैरिजन विद द मेन स्ट्रीम बट आई स्टिल थैंक टू ऑल आर स्पॉन्सर जो इस काबिल करते हैं ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें. जिक्र करना चाहती हूँ मैं आपके साथ हमारे स्पॉन्सर्स का, और स्पॉन्सर्स में नान कबाब का जिक्र करना चाहती हूँ. मेडिटेरेनियन फूड है, डिलीशियस है, वेरी डिलीशियस है. आपसे रिक्वेस्ट है कि मेडिटेरेनियन फूड के लिए नान कबाब 7 different locations है, 9052829797 9072829797. क्विक ट्रक ल्यूब का भी जिक्र करना चाहती हूँ. गुरजिंदर जी यहाँ पे मौजूद होते हैं, अमेरिका से कनाडा हो और एंटर होने के लिए किसी भी हाईवे के ऊपर आप दे आर जस्ट ऑन एग्जिट. जो ट्रक ड्राइवर्स हैं आपके टाइम की सेविंग के लिए द ड्राइव थ्रू फिलॉसफी जो इनकी है, यूनिक बिजनेसेस जो ट्रक इंडस्ट्रीज के लिए हैं, यानी आप अपने घर जाते हुए 35 to 45 minutes में कर ट्रक का ऑयल चेंज मुकम्मल ओवरहॉल करवा सकते हैं. फुली इक्विप्ड फैसिलिटीज इनकी हैं. ये QTL के नाम से जाने जाते हैं, QuickTruckLube.com. अब सारा आलम साहब मेरे साथ. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं?
मैं भी बस जी रही हूँ, ऐसे चलती जा रही है. मेरी गाड़ी चल रही है सर, अभी तक तो चल रही है.
चलती
का नाम ही तो गाड़ी हुआ करता है
जी.
अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान का मौसम कैसा है?
मौसम यहाँ का बहुत ही अजीब सा है, दिन को गर्मी होती है, रात को सर्दी होती है.
कम से कम नींद तो सुकून की आती होगी ना, मच्छर तो नहीं होंगे ना?
हाँ मच्छर है अभी.
अच्छा,
मच्छर है, रह जाए तो अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल नींद अच्छी आ जाती है वेदर की वजह से रात को.
ठीक.
और एलर्जी शदीद फैली हुई है क्योंकि बैलेंस चेंज हो रहा है ना.
exactly. اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کا حافظ و ناصر ہے. سر پاکستان کے معاملات کو تو میں آج ٹچ نہیں کرنا چاہوں گی, پر آئی وڈ لائک ٹو رادر ٹچ انٹرنیشنل افیئرس کو میں ٹچ کروں گی. ظاہر ہے دنیا میں, پاکستان میں بھی جو کچھ ہوا ویسٹ نے, ابھی آپ جب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی آپ کے آنے سے پہلے, ڈاکٹر خلدون زیتونی میرے ساتھ تھے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو نارتھ پول میں جھنڈا اپنا گاڑ دے گا نا وہی فاتح ہوگا. ابھی بھی ڈاکٹر خلدون زیتونی نے آج بڑی نئی بات میرے ساتھ شیئر کی, اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی شو ان یور پروگرام ایز ویل دیٹ میپ, کہ یہاں پر بھی غزہ کے ساتھ بٹوین ایجپٹ اسرائیل اور غزہ کے پاس آئل کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں. اور نتنیاہو کی جب ملاقات ہوئی جس میں چائنا کے پریزیڈنٹ شی بھی موجود تھے, رشیا بھی موجود تھا, ہی واز ناٹ ابرپٹ کہ وہ وہاں پہ نہ کرتے, وہ امن کی بات ہی کرنا چاہتے تھے, بٹ انہیں لگا کہ جو پریزیڈنٹ شی نے جب ان سے کہا کہ 1967 کے بارڈرز پہ واپس نے, نتنیاہو واز ناٹ ریڈی ٹو ڈو دیٹ. سو یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. عامر وہ میپ آپ بھی دیکھ لیجئے گا جس میں وہ آئل ریزورسز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں غزہ کی بیلٹ کے ساتھ میڈیٹرینین سی میں آئل کے ریزورسز ہیں, اور یہ جو تیل اور معدنی وسائل کے حصول کے لیے لوگوں کی جانیں, پیپل آر جسٹ لائک آبجیکٹس. تو کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟
انفارچونیٹ ہے اور بہت لوگ دکھی بھی ہیں یہاں پہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں اور جس طریقے سے ہو رہا ہے, جس طرح اسرائیل نے جینوسائڈ شروع کی ہوئی ہے. اور اگر یہ جو آپ نے ابھی خبر بتائی ہے یہ تو نئی خبر ہے, اس کا مطلب ہے کہ تیل کی خاطر جنگ ہو رہی ہے, ایک اور جو پہلے ہو چکی ہے عراق میں, ایران میں, شام میں, لیبیا میں, اور اس میں مذہب کا عنصر بھی شامل ہے. تو مذہب کی اس کا مطلب شیلڈ کے پیچھے تو مالی مفادات ہیں, اور پھر جو وار انڈسٹری ہے وہ بہت فلرش کرے گی, وہ اس کی شیئرز کی پرائسز اوپر جا چکی ہوں گی. تو انفارچونیٹ ہے, اس میں مسلمانوں کے بچے اور اسرائیل کے بھی بچوں کا نقصان ہوا ہے, وہاں بھی سویلین مارے گئے ہیں, لیکن جو اس کے ریٹیلیشن میں جس طرح وہ نیست و نابود کرنے کا, انائلیٹ کرنے کا ان کا پلان ہے اسرائیل کا غزہ کو اور فلسطینیوں کو, وہ بہت شرمناک ہے اور اس پہ بہت افسوس ہے. خاص طور پہ کل جو ہاسپٹل پہ حملہ ہوا جس میں 800 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے, اس پہ اس کی وجہ سے لوگ بہت غمزدہ اور افسردہ ہیں یہاں پہ. لیکن یہاں کے میڈیا کی زیادہ توجہ نہیں ہے اس پہ, اور زیادہ تر پاکستان میں ابھی تک جو لوکل پالیٹکس ہے اسی پہ بات ہو رہی ہے.
سر چھوڑے پرے اس بات کو, مگر میرا کنسرن ہے کہ وہ طاقتیں جیسے مغرب کی جب بات کرتے ہیں, اور مغرب وانٹ ٹو رول, اگر آپ نارتھ پول کی طرف چلے جائیں تو دے وانٹ ٹو ہیو دیئر فلیگ دیئر. اگر آپ غزہ کی بات کرتے ہیں, اور ابھی عامر سے میں نے ریکویسٹ کی, آئی ڈونٹ نو کہاں ہماری ٹیکنیکل پرابلم ہے, کیونکہ ڈاکٹر خلدون زیتونی جو میرے ساتھ تھے, ہی از پروفیشنلی این انجینئر, اور جنہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ آئل کے ریزروز ہیں جو میڈیٹرینین سی میں ہیں, اینڈ دے ڈڈ ناٹ, اینڈ آئی وش کہ آپ اس پروگرام کو, اٹس اے نیو ڈور فار می ایز ویل. مگر سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ایجپٹ, انور سادات کو امریکہ اور اسرائیل کا جب ایک معاہدہ ہوا تھا, انور سادات کو اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا اس علاقے میں امن لے کے آنے کے لیے, کیا وجہ ہے کہ اسرائیل جو ایجپٹ جو غزہ میں لوگ مر رہے ہیں, بھن رہے ہیں, ان کو, یعنی دے ریفیوجیز, دیز ریفیوجیز کین ناٹ کراس دا بارڈر, they have to either die or to migrate. مرو یا مائگریٹ ہوتے ہوئے یا بم کھا کے مرو.
مائگریٹ بھی وہ صرف کر رہے تھے, اور وہیں پہ کل بم کا جو حملہ ہوا ہے وہ اسی طرف ہوا ہے جس طرح وہ مائگریٹ کر گئے تھے. تو یہ دیکھیں, یہ ہماری کمزوری ہے عرب ممالک کی اور مسلمانوں کی, کہ ایک اسرائیل چھوٹا سا ان کے ساتھ جو کر رہا ہے, اور جس پہ ویسٹ اس کے ساتھ ہے, یو ایس, یو کے اور یورپین یونین جو ہیں وہ, اور انڈیا, یہ تو کھل کے اس کے ساتھ ہے. اور بڑی ہی افسوسناک صورتحال یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں. آپ آرکٹک کی بات کر رہی ہیں, आर्कटिक की बात की है ना आपने,
जी 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 जी,
झंडा लहराने की बात करिए, हम तो यहाँ अपने मुल्कों में झंडा नहीं लहरा पा रहे, तो वहाँ कौन से मुसलमान मुल्क ने जाके झंडा लहराना है हमें?
सर मुसलमान मुल्क नहीं, मैं तो मुसलमान, वो तो आर्कटिक तो रशिया के साथ है ना, झगड़ा रशिया का चाइना का जमीन का, और फसाद तो यही मादन बादनी वसाइल के हैं ना। मगर आज अगर मैं इसराइल की तरफ अगर आती हूँ, तो प्रेसिडेंट अभी अभी आपने जब जिक्र किया गजा में, और इनको अभी मैं सर डॉक्टर खल्दूनी थे, उन्होंने बताया कि नॉर्थ से इनको साउथ की तरफ मूव करने के लिए गया, मगर जिस हॉस्पिटल पे बम्बारमेंट हुई है दिस वाज इन साउथ, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज ये लफ्ज कह दिया है कि दिस अटैक ऑन द हॉस्पिटल वॉज नॉट बाय इसराइल, इट वॉज बाय हमास। क्यों कवर अप ये दे रहे हैं?
कवर अप देखिए, एक तो मुझे लगता है बाइडेन का जो मेंटल सिचुएशन है वो कोई इतनी साउंड नहीं है, और इसमें अमेरिका में भी बहुत बात होती रही है, उनके सियासी मुखालफिन भी ये इल्जामात उन पर लगाते रहे हैं, कई दफ़ा वो गिर चुके हैं। अभी चार दिन पहले उन्होंने कहा कि बच्चों के सर कलम कर दिए, बेबीज बीहेडेड बाई पैलेस्टीनियंस, वो झूठी खबर थी, उसको उन्होंने कह दिया, जिसके कुछ घंटे बाद फिर व्हाइट हाउस को तरदीद करना पड़ी कि हमारे सदर की दिमागी सेहत ठीक नहीं है इसलिए वो ऐसी बातें करते रहते हैं। और आज उन्होंने
ये नहीं कहा कि हमारे सदर की थोड़ी सी इज्जत इतनी की जाती, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने उसको कवर अप दिया था कि हाँ ये मीडिया पे खबर दौड़ रही है मगर इसमें कोई सदाकत नहीं है, मगर प्रेसिडेंट को बुरा भला
उसने नहीं कहा, लेकिन उनके मुखालफिन तो कह रहे हैं और इस पर बात हो रही है मुसलसल, उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है कि,
मगर सर वो तो अगले इलेक्शन में जा रहे हैं सेकंड इलेक्शन के लिए,
वो गुड लक टू अमेरिकन्स, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने मुंतखब करना अपना सदर जिसको भी करें, लेकिन जो भी सदर मुंतखब करेंगे उसके दुनिया को नतीजे तो दुनिया को भुगतने पड़ते हैं ना, सदर के और उसकी पॉलिसीज के और उसकी दिमागी सेहत के। अब ये पहले उन्होंने बेबीज वाली झूठी खबर दी, उस पर व्हाइट हाउस ने तरदीद की, इसके आज उन्होंने ये कह दिया कि खुद ही उन्होंने अटैक किया है, खुद इतना बड़ा अगर उनके पास बॉम्ब था तो ये उन्होंने इसराइल पे क्यों नहीं चलाया, मैं तो इस पे हैरान हो रहा हूँ, छोटे छोटे रॉकेट्स वो इतने दिनों से मार रहे हैं तो ये इतना बड़ा कर देते, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है और इसका काउंटर ये एक्चुअली इसराइल ने काउंटर नैरेटिव किया। देखिए मैं आपको दो तीन चीजें क्विकली बता सकता हूँ इसमें, एक तो ये है कि सिर्फ चार दिन पहले इसराइल ने धमकी दी थी कि इस हॉस्पिटल पर भी वो हमला करेगा, और उसने किया, उसने छोटा हमला किया वार्निंग के तौर पर और कहा कि मैं इस हॉस्पिटल पर हमला करूंगा, और फिर कल कर दिया। तो एक तो इतना बड़ा एक्सप्लोसिव मटेरियल अगर हमास के पास था तो उसने वो इसराइल पे पहले क्यों इस्तेमाल किया। दूसरी बात ये है कि जो ये वहां पे इस्तेमाल हुआ है जो बारूद, वो अमेरिका और इसराइल के पास है और वही इस्तेमाल हुआ, वो हमास के पास कैसे आ गया, और फिर खुद ही अपने ऊपर उन्होंने करके इतने लोग अपने मार के, तो उन्होंने मजलूमियत का अगर डंडरा पीटना था तो फिर इसराइल के जो हकूमती नुमाइंदों ने वो उसकी जिम्मेदारी क्यों कबूल की, फौरन जिम्मेदारी कबूल की, और वो धमकियां भी पहले देते रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को भी हम नहीं छोड़ेंगे, तो इन दोनों चीजों की तरदीद कौन करेगा?
सर, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिनेरियोज हैं जो रशिया और यूक्रेन के बीच में होते चले जा रहे हैं। मगर मेरा अब यहाँ पे आपसे एक सवाल है, मिस्र एक तरफ, मिस्र जो है वो गजा में जो फिलिस्तीनियन रेफ्यूजीज को आने का नहीं, दे हैव ओनली वन चॉइस टू मूव टूवर्ड साउथ, वन थिंग। मगर प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात होना थी और ये मिस्र के सदर और महमूद अब्बास में तयशुदा मुलाकातें मनसूख हो गई सारी की सारी, बट प्रेसिडेंट बाइडेन इज स्टिल ट्रेवलिंग टू इसराइल, वेयर एज फतेह सीसी जो हैं उनसे भी मुलाकात उनकी उन्होंने कैंसिल कर दी है, और महमूद अब्बास से भी मुलाकात हो गई है, तो क्या वजह है कि मिस्र डू यू थिंक कि जाग जाएगा, कोई स्टेप लेगा या अपने
जाग जाना चाहिए था, बहुत देर पहले जाग जाना चाहिए था, कम से कम रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करता, कम से कम ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए बॉर्डर खोलता, लेकिन मिस्र ने बहुत मायूस किया है यूजुअल, और सीसी जनरल सीसी जो है वो अमेरिकी एजेंट है, यही तो जो फौजी हुक्मरान लाए जाते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में वो इसीलिए लाए जाते हैं ना कि उनके जरिए एजेंटी करना आसान होता है, पूरे मुल्क को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो एक आर्मी चीफ को हायर कर लेते हैं, उसके जरिए उस पूरे मुल्क को कंट्रोल किया जाता है। अगर जमहूरियत हो, पार्लियामेंट हो, तो किस किस को जाके अमेरिका कंट्रोल करे। मैं आपके पिछले सवाल का एक और जवाब देना चाहता हूँ। आपने जो बाइडेन का तो कहा कि अमेरिकी सदन ने जिम्मेदारी कबूल किया, अमेरिकी सदन ने कहा है कि ये हमास ने खुद किया है, लेकिन आप कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का बयान पढ़ें, उससे मजम्मत किए शदीद अल्फाज में इस बात की, जो हमला हुआ है हॉस्पिटल पे, रशिया ने किया, चाइना ने किया है और बहुत सारे मगरबी मालिक ने भी अब की है। तो इसलिए जो बाइडेन तो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है, वो हर सूरत में जोश लॉबी को खुश करना चाह रहा है, इसराइल को खुश करना चाह रहा है, तो वो तो एग्जैक्टली वही बात करेगा। आपने एंटोनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कोई आपने कभी सुना है कि अगर कोई मुसलमान होता वजीर खारजा और वो किसी मुस्लिम मुल्क में जाता और वहां जाके कहता कि मैं पहले मुसलमान हूं और फिर मैं वजीर खारजा हूं किसी मुल्क का, तो कैसा उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता, क्या क्या किया जाता है? लेकिन एंटोनी ब्लिंकन ने कहा ही जाके, और उसको कोई उसको रिएक्शन नहीं किसी ने दिया, किसी ने कहा कि ये इस्लामोफोबिया है, ये मजहब के जरिए मजहब के नकाब में दहशतगर्दी फरोग दी जा रही है, ये जेनोसाइड मजहब के नाम पे उसको सपोर्ट किया जा रहा है, किसी ने ये बात नहीं की। तो ये अनफॉर्चुनेट है, वो ताकतवर हैं, हम कमजोर हैं, और मिस्र ने कैंसिल कर दिए मीटिंग, तो ठीक किया है, अच्छी बात है कि ये कैंसिल, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि उनको बॉर्डर खोलना चाहिए था और उन तक गाजा में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक सामान पहुंचाना चाहिए था, खाने पीने का और फ्यूल पहुंचाना चाहिए था, और उनको यहाँ अपनी तरफ आने की इजाजत भी देनी चाहिए थी। लेकिन ये मैं क्या कहूँ, इसको ट्रेजेडी कह सकता हूँ, बदकिस्मती कह सकता हूँ, गुस्सा आ रहा है, लेकिन बेबस है, तो ये बेबसी है हमारी, और हम अपने करतूतों के खुद जिम्मेदार हैं। वैसे शिकवा करने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम हैं क्या,
तमाम क्या। मगर मेरा ख्याल है मुस्लिम उम्मा ने, मैं ब्लेम इतना नहीं करूंगी, थोड़ा सा रिस्पांस दिया है। ये सब व्हाइट हाउस के मुताबिक फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की जानिब से गजा की सूरत है, उन्होंने कहा सो गया तो हम प्रेजिडेंट बाइडन से नहीं मिल सकते। इसके साथ साथ मिस्र के सदर जो हैं फतेह अल सीसी, उनने भी इनकार कर दिया है। महमूद अब्बास, इन्होंने तयशुदा मुलाकातों को मनसूख किया, दोबारा मिलने का जरूर कहा गया है कि हम दोबारा अरेंज करेंगे। यहाँ से आपने प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, तो आप ही के प्रोग्राम में मैं ये भी अनाउंस करना चाहती हूँ, कल हमारी कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज मुझे मिली, लिबरल एनडीपी कोअलेशन एंड ब्लॉक वोट टू प्रोटेक्ट द सीबीसी आफ्टर द रिफ्यूज टू कॉल हमास अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इनको जवाब लिखा कि मुझे ये बताइए हमास के फाउंडर्स कौन थे, मुझे आप जवाब दीजिएगा कि अगर फलस्तीन के अस्पताल पे अटैक हुआ है तो किसने ये अटैक कराया, जिसने ये अटैक किया है आर द टेररिस्ट, बिकॉज इनक्यूबेटर्स में बच्चे थे, बूढ़े लोग यहां पर मौजूद थे, तो आर द टेररिस्ट। तो सीबीसी और एनडीपी ने हमास के लिए लव्स टेररिस्ट इस्तेमाल नहीं किया, इसके लिए वो ब्लेम कर रहे हैं कॉन्जर्वेटिव वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को और एनडीपी को। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन खित्तों का हाफिज व नासिर है। एनीथिंग एल्स व्हाट यू वुड लाइक टू ऐड ऑन सर?
एक चीज का जरूर जिक्र करना चाहिए कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उसने बड़ा अच्छा काम किया, उसने स्नब दी है एंटनी ब्लिंकन को और उसको बुला के मीटिंग के लिए बिठाया है, सारी रात इंतजार
करवाया।
That's a good step. I think at least he showed some guts. और आई अप्रिशिएट दैट, वी शुड अप्रिशिएट दैट।
जनाब अमेरिका के अखबार ने आर्टिकल लिख दिया उसके ऊपर कि MBS बड़ा शिरूड है और ही इज प्लेइंग अ डबल गेम। एक तरफ इंडिया के G20 में वो ये जो नया रूट है इंडिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इनके साथ वो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ही इज प्लेइंग अ डबल गेम। ये अमेरिका के अखबार ने उस पर आर्टिकल भी लिख दिया।
देखिए अमेरिका अब जाहिर है उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगा और मीडिया को जाहिर है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब एक बात तो ये है कि जो वो जो कॉरिडोर बना रहे थे वो इस जंग से पहले की बात है, तो इस जंग के बाद तो
सर, वो बना नहीं रहे थे, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही साइन हुआ था, सऊदी अरब भी हामी भर गया था, केड़ा इन ट्रू केड़ा इन विजुलाइज हो जाना, मतलब हालत एमओयू ही है ना।
हर मुल्क को हक होता है कि अपने वो इंटरेस्ट के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करे, और वो उन्होंने किया. मतलब ये तो मैं समझता हूँ एक निशानी है इस बात की कि सऊदी अरब या मुस्लिम ममालिक कॉमर्स और ट्रेड पे तवज्जो देना चाह रहे हैं, बड़े ममालिक जो हैं, तो और वो सिर्फ आ रहे थे. तो अब इस जंग की वजह से और इस पे जो इसराइल ने जिस तरह रिएक्ट किया इस पे इनह्यूमेनली, और जिस तरह उनको जानवर कहा गया है फलस्तीनियों को, ये चीज जो है वो इसने उस सारे माहौल को तबाह कर दिया है जो शायद बेहतरी की तरफ ले जाता, जो अमन की तरफ ले जाता. और फिर मैं कह रहा था कि जो उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हैं, इस जंग के बाद कौन सा वो कॉरिडोर, वो तो बिल्कुल पाइप ड्रीम है, अब नहीं होगा वो पहले भी नहीं खैर होना था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही उसकी कोई उम्मीद ना रखें. मैंने तो ये जिक्र किया कि मैं नहीं बिलीव करता जो अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि वो इस पर डबल गेम कर रहे हैं. देखें, डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप हर ममालिक से, मुल्क से अलग अलग आप डील कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक डील कर रहे होते हैं, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं. अमेरिका ऐसा बहुत सारे काम करता है जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मुनाफ़त है, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि उनके लिए इंसानी जाने यूक्रेन में और वैल्यू रखती हैं और फलस्तीनियों की और वैल्यू रखती हैं. ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कंट्रास्ट है, और इतनी बड़ी जो तजाद है ये लोगों ने महसूस किया है, और अब पब्लिक ओपिनियन बदल रही है, खासतौर पर कल जो बदकिस्मत वाकया हुआ है हॉस्पिटल पे अटैक का, उसके बाद में.
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर. सर मैं एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहती हूँ, और मैं डेफिनेटली अपने लिसनर्स के साथ कवर भी करूँगी. ड्रॉ डाउन अथॉरिटी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की ड्रॉ डाउन अथॉरिटी है, इससे पहले भी ड्रॉ डाउन अथॉरिटी में उन्होंने ही कैन वीटो एनी थिंग विद इन द कंट्री, एंड इसराइल की उन्होंने मदद की थी, मगर उसके बाद इन्होंने यूक्रेन की बेमिसाल बार मदद की है. कहते हैं 1994 में क्लिंटन के दौर में इसराइल को 50 F-16 और इनके पास कोई रिजर्व में नहीं थे, इनके अपने जो इस्तेमाल के तैयारे थे वो इसराइल को इन्होंने दिए थे. उसके बाद यही ड्रॉ डाउन अथॉरिटी के तहत इन्होंने यूक्रेन को मदद की, एंड दैट वॉज कि पूरा का पूरा नेटो एक मुल्क के खिलाफ लड़ रहा है, और इसराइल को अभी जो यूक्रेन बाइडन इंतजामिया ने 6.2 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की जो फौजी मदद 40 से जायद मरतबा ड्रॉ डाउन अथॉरिटी के तहत यूक्रेन को दी थी. और ये वो अथॉरिटी है जिसमें ही डजंट हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द अपर हाउस इन द लोअर हाउस, ही जस्ट हैव टू इन्फॉर्म दैट दिस इज व्हाट वी डू, इट्स एमरजेंसी सिचुएशन एंड वी हैव टू हेल्प देम टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. क्या आप समझते हैं कि अमेरिका अल्टीमेटली चाइना की जो पावर है उसको चैलेंज कर सकता है, बिकॉज चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट एट द मोमेंट. अभी भी रशिया और चाइना, ये जो हमास का अटैक हुआ है इसमें सीरिया भी साथ शामिल था, और सीरिया के बशारुल असद को सपोर्ट करते हैं आपके रशिया के व्लादिमीर पुतिन साहब. बट डू यू थिंक के और जाहिर है इस पूरे के पूरे क्राइसिस के बीच में जब रशिया के ऊपर इतनी पाबंदियां लगी हुई थी, तो चाइना ने उनसे तेल भी खरीदा, चाइना ने उनसे उनकी रकम में लेन देन भी किया, तो डू यू थिंक कि दे कैन ब्लॉक चाइना इन रशिया?
देखिए, एक तो बात यह है कि ये जो अमेरिकन ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भी, इसकी भी बात हो रही है कि अमेरिका इसराइल में अपने ट्रूप्स भेजेगा, जिससे सिचुएशन और खराब हो सकती है. और जहां तक चीन को कंटेन करने की बात है, चीन को इकोनॉमिकली कंटेन करना चाह रहा था यूएस. अब इसमें बड़ी दिलचस्प सूरतेहाल पैदा हो गई है. एक तो एक फोकस ये था अमेरिका का कि चीन को वो कंटेन करे इकोनॉमिकली, और दूसरा फोकस चीन का ये था, सॉरी अमेरिका का ये था कि वो रूस को यूक्रेन में उलझाया हुआ था उसने. लेकिन ये जो
अपनी पार्टी रूस ने,
बिल्कुल, जो इसराइल फलस्तीन के दरमियान जो अब ये मसला हुआ है ना, अमेरिका की तवज्जो दोनों तरफ से हट गई है, और बाइडेन बहुत पॉपुलर नहीं है इस वक्त, ना ही उसका बहुत ज्यादा कोई होल्ड है अमेरिकन मामलात में, ना ही कोई वो डायरेक्शन, वाजे डायरेक्शन दे पा रहा है. चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी, यूक्रेन की वॉर देखे ना कितने अरसे से लटक रही है, कोई किसी तरह नतीजे तो नहीं निकल रहा. और दूसरी तरफ रीसेंट हिस्ट्री अगर आप देखें तो अमेरिका अफगानिस्तान से कितना मुश्किल से निकला है, और जंग जीत के नहीं निकला, तालिबान वापस आए.
साहब के लिए तो बड़ा नेगेटिव हो गया कि जंग भी हारी, ए हुन इसराइल दा पंगा पाके बह गए ने. तो डू यू थिंक
तो यहां अफगानिस्तान में उसको हैड टू फेस द ह्यूमिलिएशन अमेरिका को, फिर यूक्रेन में बीइंग ह्यूमिलिएटेड, यूक्रेन अपने इलाके वापस तो नहीं ले सका और अभी भी जारी है. अब तो ज्यादा रूस
सर, बट दे न्यू दैट यूक्रेन कैन नेवर विन, दे जस्ट वांटेड कि रशिया की मैन पावर को जितना नुकसान, और रशिया में तो आपको पता है मर्दों की तादाद वैसे भी कम है, उनके उनके ये लॉसेस बहुत ज्यादा हुए हैं, एंड दैट्स ऑल व्हाट दे वांटेड.
लेकिन वो ये भी, वो एक और चीज भी चाहते थे ना, अमेरिका चाहता था कि नेटो का मेंबर बनाए यूक्रेन को, वो सारा उनका मामला तो खत्म हो गया. वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी ना उनकी यूक्रेन में, वो तो शॉर्ट टर्म भी पूरी नहीं कर सके तो लॉन्ग टर्म कैसे पूरी कर सकेंगे. और साथ चाइना पे, चाइना से तो जो हट गई. आप चाइना देखें, पिछले अगर 40 साल आप देखें, अमेरिका ने अफगानिस्तान में दो जंगें लड़ी हैं, चाइना ने एक जंग भी नहीं लड़ी. फिर अब अमेरिका यूक्रेन की जंग में उलझ गया, अब वो इसराइल की जंग में उलझ गया. इस तमाम अरसे में चाइना ने अपना फोकस रखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इसीलिए चाइना आज दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी बन चुका है, और इसीलिए चाइना ने अमेरिका को बैकफुट पे कर दिया है. इस वक्त जितना डॉलर का स्टॉक चाइना के पास है, अमेरिका के पास भी नहीं है. तो अमेरिका जितना इसराइल में फंसता जाएगा, उसके लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे और चाइना मजबूत होता जाएगा. चाइना अगर पाकिस्तान में हुकूमत बदल गई अगले इलेक्शंस के बाद और चाइना फ्रेंडली हुकूमत आ गई, तो आप देखिएगा इस खित्ते पूरे की सूरत हाल बदल जाएगी और अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में वो और कम हो जाएगा. तो इसलिए ये जियो स्ट्रेटेजिक जो इस वक्त अपहीवल्स हैं या जो फॉल्ट लाइंस अमर्ज हो रही हैं, वो बड़ी ही लॉन्ग टर्म होंगी और उसके बहुत डीप इंपैक्ट होगा अमेरिका पे और अमेरिकन पॉलिसीज पे. और इस दौरान अमेरिका का अगला इलेक्शन का साल है, उसमें अमेरिका कौन सा कोई फोकस कर सकेगा अपनी सही पॉलिसीज पे, खास तौर पे उस वक्त जब ये श्योर नहीं है कि जो बाइडेन को सेकंड टर्म मिलेगी. अगर ये श्योर होता जैसे रेगन के दौर में था, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में था, छोटे जूनियर जॉर्ज बुश के दरमियान जब जंगें हो रही थी अफगानिस्तान की, तो वो उन्हें सेकंड टर्म मिलती रही आराम से. इस वक्त जो बाइडेन की सेकंड टर्म कंफर्म नहीं है, तो मैं समझता हूं अमेरिका पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली काफी चैलेंजेस है अमेरिका के लिए, और रूस और चीन एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं. तो आई थिंक अमेरिका इसका क्या प्लान है, उसके पास काउंटर प्लान, लेट्स सी.
बहुत शुक्रिया जनाब अफसार आलम साहब. मैं आज पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहा, क्योंकि अमेरिका की इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड विच इज़ मेकिंग थिंग्स चेंज, दे वांट टू चेंज द मैप ऑफ मिडल ईस्ट, दे वांट टू चेंज द मैप ऑफ नॉर्थ, दुनिया के नॉर्थ का मैप, दे वांट टू चेंज द मैप ऑफ एनीथिंग. मगर अगली ताकत कौन होगी, तो अगले आने के सालों में किसको ब्लॉक किया जाएगा, अल्लाह नोज बेटर. बहुत शुक्रिया सर आपका प्रेजेंस विद अस. थैंक यू.
थैंक यू
जनाब अफसार आलम साहब से मैंने आपकी बात कराई. ड्रॉ डाउन अथॉरिटी की बात करेंगे, चंद एक स्पॉन्सर्स का पैगाम. वेलकम बैक, स्टे ट्यून्ड प्लीज.
टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडीज और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी ऑन लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA. तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेलीटाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड. मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666. टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स.
एशियन फूड सेंटर दी सारियां ही लोकेशंस ते लग गई है 12 अक्टूबर तो 23 अक्टूबर तक दशहरा अते नवरात्रि सेल. 9.07 kg क्वालिटी होल व्हीट आटा 12.99, 20 पाउंड स्वर्ण मल्टीग्रेन आटा 15.99, आमंड्स 4.99 पर पाउंड, 4 पाउंड एशियन ब्लैक चना 4.99, सवेरा रसमलाई 7.99. ग्रोसरी तो इलावा इना कोल वन सवनिया फ्रेश मिठाइयां भी ले सकदे हो. नवरात्रि पूजा अते दशहरे लई खास समान भी ले सकदे हो. दशहरा सेल एट ऑल एशियन फूड सेंटर लोकेशंस. कॉल एट 416-740-326.
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट. दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे, और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मजीब काजी, आपके फैमिली डेंटिस्ट, 9054578661।
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है।
अबू जान, खुदा का वास्ता, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे, परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर पर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव, इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM, यंगस्टाउन, टोरंटो।
ट्रकिंग वाले वीरो, ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब, लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ग्रो ग्रीन टीम चाहती है कि कम्युनिटी माहौलियाती इकदाम की वसी रेंज के बारे में जानें, जैसे गार्बेज की सफाई, कम्युनिटी में पौधा लगाने की तकरीबा, कम्युनिटी बागबानी और बीजों का इश्तराक, मौसमियाती तब्दीलियों के लिए लचक पैदा करना और घर में तवानाई की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, तूफान के पानी के इंतजाम के प्रोग्राम और तूफान के पानी के तालाब की हिफाजत, सैलाब से बचाव और बहाली और आवामी आर्ट प्रोजेक्ट पर वसाई और साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोग्राम और दीगर पायदार नकल हमल के इकदाम। मजीद जानने के लिए करें brampton.ca/growgreen।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो, 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
इस फॉल में आ रहा है आपके लिए स्टेशन साइड, मिल्टन के डाउनटाउन में आपकी मुनफरिद रिहाइश का, जो GTA की बेहतरीन कीमत $487,990 में दस्तयाब है। दो टावर से मुश्तमिल ये रिहायशी मंसूबा सेंट्रल पोडियम के जरिए इन एंड आउट एमिनिटीज फराहम करता है। मिल्टन गो स्टेशन से मुल्हिक स्टेशन साइड मिल्टन के फ्यूचर मोबिलिटी हब का संगे बुनियाद है, जो आपको बिना किसी रुकावट आपकी मंजिलों पर पहुंचाने में मददगार साबित होगा। आज ही रजिस्टर कीजिए stationside.ca।
Shaheen Tikka and Kebab.
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
Mujhe maze de chicken tikke kebab, biryani, dal tadka.
Lahori style nashta, mazedar kadhai. Mouth-watering kebabs and sizzling barbecue items.
Shaheen Tikka and Kebab.
In Flemington Mall.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ $4,250 ਦੇ ਰਿਬੇਟਸ ਤਮਾਮ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਂ forddealers.ca।
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। आमिर भी मेरा ख्याल है वहाँ पे पहुँच गए हैं। साहब, क्रिकेट में सुना बहुत बड़ा अपसेट हो गया है और यकीनन आज के प्रोग्राम में शाजिया जी, आई बिलीव सो, कैनेडियन क्रिकेट के जो कैप्टन हैं, ही इज गोइंग टू बी विद अस टू कवर द क्रिकेट। साद बिन जफर हमारे साथ होंगे और शाजिया जी तकरीबन 6 बजे के करीब क्रिकेट का जो एक सेगमेंट करती हैं। मगर साहब, भारत में जो मेगा इवेंट है, दूसरा अपसेट हो गया। और दूसरा अपसेट क्या थी, यानी वो जो फेवरेट थे वो पीछे चले गए और जो अनफेवरेट थे वो आगे आ गए। ये जनूबी अफ्रीकी टीम को नीदरलैंड ने मंगल को खेले जाने मैच में 38 रन से शिकस्त दे दी और ये नीदरलैंड ने कामयाबी के लिए 246 का स्कोर दिया था। जनूबी अफ्रीका की टीम 207 करके 38 रन कम थे आउट हो गई। इस कामयाबी के साथ ही नीदरलैंड ने न सिर्फ दो कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए बल्कि दूसरे मुखालिफिन के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। अब अगर हम पॉइंट स्कोर देखते हैं, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया नंबर वन है 6 पॉइंट के साथ, न्यूजीलैंड नंबर वो टू है दैट इज 6 पॉइंट्स, साउथ अफ्रीका नंबर तीन है 4 पॉइंट के साथ और पाकिस्तान नंबर चार है 4 पॉइंट के साथ। मगर यहां पर अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, वो जो बेचारे फेवरेट थे वो अगली लाइन में चले गए, जैसे इंग्लैंड बेचारा जस्ट 2 पॉइंट्स, अफगानिस्तान 2 पॉइंट, बांग्लादेश 2 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट, नीदरलैंड 2 पॉइंट और श्रीलंका, माय गॉड आई कुडंट बिलीव इट, श्रीलंका 0 पॉइंट है, यानी दिफाई चैंपियन इंग्लैंड पांचवें नंबर पे 4 पॉइंट के साथ, दो पॉइंट्स इंग्लैंड के ऊपर ही 2 पॉइंट, चैंपियंस, क्रिकेट इज ऑलवेज बाय चांस, और दिफाई चैंपियन पांचवें नंबर पर, पांच मर्तबा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया नौवें नंबर के ऊपर, माय गॉड, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड छठे से आठवें नंबर पर काबिज है। श्रीलंका वह टीम है जिसने अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता। बुध को अफगानिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा जिसने इंग्लैंड को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप 2023 का पहला अपसेट किया था। सो बुध को अफगानिस्तान का मुकाबला किससे होगा? न्यूजीलैंड से होगा। बहुत सारे अपसेट्स हैं और एक्चुअल फैक्ट्स आप लेंगे 6 बजे के बाद। बरसल बहुत सारे लोगों ने बहुत से जबरदस्त तबसरे भी किए हैं, दैट्स व्हाट वो कहते हैं, शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टुडे, नाउ आई एम डिलीवरिंग उबर ईट्स टू गेट थ्रू द विंटर, फनी हाउ थिंग्स चेंज। ऑफ कोर्स अगर आप उबर चलाते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन बी अ सक्सेस वन डे। बहुत से लोगों ने इसके साथ बड़ी बड़ी कमाल की इमोजीज भी बना के भेजी हैं। एक इंटरव्यू की तरफ लेकर के चलती हूँ, क्रिकेट का ये जो है ऑफ कोर्स बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ स्पॉन्सर, जनाब कौकब जावेद। कौकब जावेद मॉर्गेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ टफ टाइम, आई कैन इमेजिन इट इज अ टफ टाइम, इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, बल्कि बीएमओ की एक स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरी थी एंड आई थिंक आई सेव दैट स्टेटमेंट, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास हुई तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। उन्होंने कहा है कि भाई अब कनेडियन को और इन लोगों को चाहिए कि मतलब हाथ हौला रखो, इस तो बाद तुसी इंटरेस्ट रेट जड़ा है ना मजीद ना बताओ, अदरवाइज यू विल मेक लाइफ डिफिकल्ट। मगर उन्होंने ये कहा है कि लोगों को चाहिए कि आप अपने बिल्स को कम कर लें मगर अपनी घरों को फोर क्लोजर पे मत जाने दें, एंड दिस इज नॉट टाइम टू सेल योर प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट इट इज। ये बीएमओ का कल और परसों में एक इंफॉर्मेशन आई थी जो मैंने अपने पास संभाल के रखी थी। कौकब जावेद, बहुत से लोग, जाहिर है दिस इज द टाइम जिसमें जिनके पास पैसा है दे बाय प्रॉपर्टी, बिकॉज प्रॉपर्टी पे आप बार्गेन कर सकते हैं, और अगर आपके मसल स्ट्रांग हैं, अगर आपका मॉर्गेज का प्री अप्रूवल हुआ है तो यू कैन निगोशिएट वेरी वेल मॉर्गेज के प्री अप्रूवल के लिए, अपनी मॉर्गेज करवाने के लिए, बिफोर यू थिंक अबाउट बाइंग अ प्रॉपर्टी गेट योर अप्रूवल डन। कॉल कौकब जावेद सेंटम फ्यूचर मॉर्गेजेस के साथ 416-454-6065। कौकब जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
अल्लाह का बहुत शुक्र है सर। मॉर्गेज के रेट्स आजकल क्या चल रहे हैं, और कहा जाता है कि अगर तो ये वाइज है इन्फ्लेशन जो है पिछले महीने की निस्बत इस महीने थोड़ा कंट्रोल, यानी 4 से 3.8 से उत्ते आ गया, और ग्रोसरी की प्राइसेस कंपैरेटिवली कम हुई हैं, 6.6 से 5.8 के ऊपर आ गई हैं, तकरीबन 0.8% कमी आई है ग्रोसरी की प्राइसेस के बीच में, एंड दे आर डूइंग सर्टेन अदर थिंग्स। आप मुझे मॉर्गेज के हवाले से बताइएगा कि एक तो मैं आपकी फोरकास्ट जानना चाहती हूँ कि आगे फिर ख्याल किया जाता है कि मॉर्गेज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो व्हाट डू यू सी नाउडेज?
जी बेसिकली ये है कि मेरी, जैसे मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, मेरी इसमें एक्सपर्टी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा गेस वर्क वो है जो है वो ये कि मैं आई डोंट थिंक इंटरेस्ट रेट जैसे आप फरमा रही थी नहीं बढ़ने चाहिए, अफोर्डेबिलिटी और मुश्किल हो जाएगी। अब जो ये डिसाइड करते हैं उनको तो थोड़ा सा इसको रिव्यू करना चाहिए कि सिचुएशन तो ऑलरेडी बुरी नहीं हुई, बहुत बुरी हुई हुई है कि हर बंदे सबको शिकायत है अफोर्डेबिलिटी की, और मॉर्गेजेस जैसे अप्रूव हुआ करती थी वो उसमें भी क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज आ गया है, लेकिन बिजनेस बिजनेस एज नॉर्मल, लेकिन स्लो डाउन थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन मॉर्गेजेस अभी भी हो रही हैं, तो लेट्स होप के इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते, उससे काफी फर्क पड़ेगा। मेरा सेकंड ओपिनियन ये है कि हो सकता है कि 2-4-6 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट होल्ड हो जाए, होल्ड पे चले जाए जब तक थोड़े सा इन्फ्लेशन और कंट्रोल नहीं होती, तो दैट्स वो ये सिर्फ मैं अर्ज कर सकता हूँ। बाकी अब क्या होगा, थोड़ा सा टाइम के और इंतजार है, तो आई होप जो भी हो अच्छा हो।
बहुत शुक्रिया, और मैंने आपके साथ बीएमओ की एक रिपोर्ट को शेयर भी किया था। अगर आप मॉर्गेज चाहते हैं तो आप कौकब जावेद से रابطہ कर लीजिए, कौकब जावेद 4164546065। सर आप अपना नंबर दे दीजिएगा और ये मुझे बताइएगा कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है, मॉर्गेज कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की, एंड व्हाई इट इज बेटर टू कम टू एन एजेंट रादर देन गोइंग टू अ बैंक।
देखिए जी, मेरा नंबर है 4164546065। मेरी जो है, मैं मॉर्गेजेस करता हूँ हर तरह की, उसमें बैंक्स के साथ भी मैं आपकी मॉर्गेजेस अरेंज करके देता हूँ, बी लैंडर्स जो है जिसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है रेगुलर बैंक्स की निस्बत, और प्राइवेट लैंडर्स। अब ये मैं सब जो है, आप न्यू प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, आपकी न्यू परचेज है या आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज है, चाहे वो बैंक के साथ हो, चाहे वो बी लैंडर या प्राइवेट लैंडर, मैं ये सारा आपको अरेंज करके देता हूँ। वो मैं पिक एंड चूज, ये नहीं कि मैं कमर्शियल नहीं करूंगा या मैं रेजिडेंशियल नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा हो गया इस काम में, तो इसमें मैं सब फाइनेंसिंग को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, इन एंड आउट, आई नो ट्रिक ऑफ द गेम, एंड जो भी है ट्रिक जो है कोई गलत किस्म की ट्रिक नहीं है, लेकिन वो जो एक प्रोडक्ट नॉलेज होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा है। और जब आपके कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम आती तो मैं आपको हमेशा 3 ऑप्शंस देता हूँ, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी और जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। अब अगर आप मेरे पास आते हैं तो आई शॉप अराउंड फॉर यू, आप मुझे बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी है, आप न्यू होम बायर हैं, आप न्यू कमर हैं, आपको फर्स्ट मॉर्गेज चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, बैंक्स के साथ चाहिए, या आपको प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट लैंडिंग, तो उसमें होता ही है कि मैं सब आपकी शॉप अराउंड करता हूँ, जहां से मुझे अच्छे से अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आपको 3 ऑप्शंस मैं दूंगा, जो मर्जी जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, और जो प्रोसेस है पूरा मॉर्गेज का वो आपको मैं आपको पोस्ट, आई विल कीप यू पोस्टेड हर हर उस पे कि अभी कहाँ हुआ, हम कहाँ हो गया।
सर एक सवाल मेरा आपसे, यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को ही हैंडल कर लें, बाज़ोकात अगर क्रेडिट स्कोर के बारे में इंक्वायरी करते हैं या अगर आप उनसे पूछते हैं तो हर इफेक्ट्स क्रेडिट स्कोर, यानी आपकी रेटिंग जो है कम जाती है, एज फार एज आई नो। तो मुझे ये बताइएगा कि आपसे अगर बात की जाए तो व्हाट इज द सिक्योरिटी दैट आई विल गेट माय मॉर्गेज डन एंड आई विल गेट द क्रेडिट बट इट वोंट अफेक्ट माय क्रेडिट स्कोर एंड आई मस्ट बी श्योर कि मेरा क्रेडिट मैसअप या स्पॉइल नहीं होगा।
जी मेरी गारंटी है और मैं आपसे भी कमिट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरे बारे में कोई शिकायत आए मुझे राइट अवे आप मुझे कर सकती हैं क्वेश्चन। मैंने कभी भी आज तक 1 से ज्यादा आपका क्रेडिट कभी पुल नहीं किया, कभी भी मैं नहीं करता कि मैं सेकंड अटेम्प्ट करूं। ये बड़ी कॉमन सी शिकायत है मार्केट में या हमारे प्रोफेशन में कि 10-10 इंक्वायरीज हुई होती हैं और जो क्रेडिट स्कोर है, बीकन स्कोर जिसे कहते हैं, वो 100 पॉइंट्स ड्रॉप हो जाता विद इन अ वीक, विद इन अ वीक। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं और बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने खुद पर्सनली क्रेडिट रिपोर्ट्स देखी हुई है और मुझे खुद हैरानगी होती है कि वो क्यों इतनी दफा इंक्वायरी।
सर लोग बड़े नाइव हैं, लोग बड़े सादा हैं, काउंट कर लेते हैं और बाज़ुकात लोग जिन लोगों के हाथ में हम देते हैं अपने बारे में बताइएगा। देर आर सो मेनी, आप कितने अरसे से मॉर्गेज के बिजनेस में
है? मुझे ऑलमोस्ट 20-22 साल जो इंडिपेंडेंटली मैं काम कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ जी 2012 से, 12 साल तो हो गए मुझे। उससे पहले मेरा बैंकिंग बैकग्राउंड है, TD, CIBC एंड BMO। मैं मैनेजमेंट पे था, दैट्स व्हाई मैं इसलिए इतनी गारंटी से बात करता हूँ कि आई नो बैंकिंग इन एंड आउट और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रोडक्ट नॉलेज है। मैं आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपके साथ वही प्रॉमिस
कर सकता हूँ।
416-454-6065। और अरफा जी, एक आजकल बहुत इश्यू चल रहा है जिसको आपको भी नॉलेज है कि रिन्यूअल मुश्किल से हो रही है, वो जो क्लोजिंग आ गई या न्यू परचेज की या जो एक टर्म है वो एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई, आपको दोबारा से मॉर्गेज रिन्यू कर ली, उसके भी इश्यू आ रहे हैं। अगर आपकी रिन्यूअल ड्यू है और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे बताइएगा, कॉल कर लीजिएगा, आपसे एक कॉल के डिस्टेंस से हूँ, प्रॉमिस ये है कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, चाहे वो प्राइवेट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज प्राइवेट या बैंक्स के साथ। और फोन नंबर वन मोर टाइम 1416-454-6065,
416-454-6065। सर बहुत शुक्रिया आपका,
अल्लाह खुश रखे सबको, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
बात कर रही है आपकी जनाब, मैंने कौकब जावेद साहब से, टॉप ऑफ द आवर का वक्त हुआ चाहता है, आप इसको एंजॉय कीजिए।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
इस फॉल विच आ रहा है स्टेशन साइड, सब तो वखरी ते सोनी रिहायश जेड़ी मिल्टन डाउनटाउन विच शर्तिया बेहतरीन कीमत 487,990 डॉलर विच दस्तयाब है। दो टावर आली इस बिल्डिंग विच सेंट्रल पोडियम थानी इंडोर ते आउटडोर आला दर्जे दिया सहूलतां दित्तियां जाणगियां। मिल्टन गो स्टेशन दे नाल बिल्कुल जुड़िया स्टेशन साइड आवाजाही दिया सहूलतां देंदा मिल्टन फ्यूचर मोबिलिटी हब दा नींह पत्थर है जेड़ा तुहानू सीधा तुहाडियां मंजिलां ते पहुंचावेगा। GTA दे फल दे फूल दे मुस्तकबिल विच अपनी इन्वेस्टमेंट दा सुखा मिठा रिजल्ट पान ले आज रजिस्टर करो stationside.ca।
रियल एस्टेट दी दुनिया विच थोड़ी कामयाबी एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी जिथे तुसी 1.5 लाख तो 2 लाख साल दा कमा सकदे हो। इस तो अलावा फ्री बायर एंड सेलर लीड्स, VIP एक्सेस टू प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, 1-on-1 सेल्स एंड मार्केटिंग मेंटरशिप, टीच एंड ट्रेन प्रोग्राम, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न ऑफिस with private room, in-house mortgage and loyal team, in-house projects investment opportunity. Fir der kadi, aao te join karo Executive Homes Realty ya call karo 905-890-1300 ya visit karo ehrb.ca।
खूबसूरती वधाउन लई, उम्र छपाउन लई देसी कैनेडियन नेचुरल हेयर कलर शैम्पू, वाल काले जां डार्क ब्राउन करन दे लई 7 मिंट लगा के इंतजार करो, तुहाडे वाल लिशका मारनगे। कलर 20-25 दिनों तक खराब नहीं होएगा ते ना ही दीवारां ते बाथटब खराब करेगा। अपने नेडली ब्रांच तो कलर अते कैनेडियन लोकल फार्म तो तैयार किया हनी खरीदने लई वैबसाइट desicanadian.com ते जाओ जां रामागिल नूं फोन करो 519-569-9282 519-569-9282।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आपको याद दिलाना चाहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सेफ रहें और क्लिक करने से पहले सोचें। जाली स्कैम्स में वो लोग शामिल होते हैं जो आपके बैंक, हुकूमत या फैमिली फ्रेंड्स होने का बहाना बनाते हैं और जाती मालूमात जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड टेक्स्ट मैसेजेस या ईमेल के जरिए मांगते हैं। इन पैगामात से मोहताज रहें जिसमें लिंक या अटैचमेंट शामिल हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, जाती मालूमात मांगे या आपसे कोई काम जल्दी में करवाएं। जब शक हो तो जाती मालूमात शेयर ना करें, पैगाम की तहकीकी होने की तस्दीक करें, उन फर्द या इदारे को कॉल करें।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ $4,250 ਦੇ ਰਿਬੇਟਸ ਤਮਾਮ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਂ forddealers.ca।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।